ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तेनावशिष्ठ सहसा कृत्वा वाक्शिरहातुरः विनिष्क्रामतिः कृच्छ्रेण निरुच्छ्वास हतस्मृतिः। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की बाई द्वारा सहसा नीचे की ओर धकेला जाकर अत्यंत कठिनाई से सिर के बल श्वास रहित तथा तीव्र वेदना के कारण स्मृति से विहीन होकर शिशु बाहर आता है। तात्पर्य कृच्छ्रेण शब्द का अभिप्राय है अत्यंत कठिनाई के साथ जब शिशु संकीर्ण मार्ग से होकर गर्भ के बाहर निकलता है तो भारी दबाव के कारण श्वास पूर्णतया रुक जाती है और वेदना के कारण शिशु अपनी स्मृति खो देता है। कभी कभी इतनी पीड़ा होती है कि मृत या मृत प्राय शिशु जन्मता है। प्रसव पीड़ा की कल्पना की जा सकती है। शिशु उस विकट परिस्थिति में 10 मास तक गर्भ के भीतर रहता है और 10 मास के बाद वह बलपूर्वक बाहर कर दिया जाता है। भगवद गीता में भगवान संकेत करते हैं कि जो आध्यात्मिक चेतना में प्रगति करने के लिए उत्सुक है उसे जन्म मृत्यु रोग तथा जरा इन 4 पीड़ाओं का विचार करना चाहिए। भौतिकतावादी भले ही अनेक प्रकार से प्रगति कर ले किंतु वह संसार के इन 4 प्रकार की कष्ट को रोकने में असमर्थ है। कपिल उवाच एवं कृतमतिर गर्भे दशमस्य स्तुव ऋषि सद्य क्षिपत्य वाचीनं प्रसूत ही श्रुति मारुतः तेना वशिष्ठ सहसा कृत्वा वाक्शिरः आतुर विनिष्क्रामति कृच्छ्रेण निरुच्छ्वास हतस्मृति। भगवान कपिल ने कहा अभी तक गर्भ में स्थित इस 10 मास के जीव के भी ऐसी कामनाएं होती है किंतु जब भगवान की स्तुति करता रहता है तभी प्रसूति काल की वायु अंधे मुंह पड़े हुए उस शिशु को बाहर की ओर धकलती है जिससे वह जन्म ले सके। वायु द्वारा सहसा नीचे की ओर धकला जाकर अत्यंत कठिनाई से सिर के बल श्वास रहित तथा तीव्र वेदना के कारण स्मृति से विहीन होकर शिशु बाहर आता है। पहले आप श्रवण करके आ रहे हैं देखिए कि किस प्रकार मां की गर्भ में एक बद्ध जीव प्रवेश करता है। ये अध्याय के सबसे पहला श्लोक ही इसकी वर्णना करता है। कर्मेण दैव नेत्राण जंतु देह पपत्तये स्त्रीया प्रविष्ट उदरंग पुंसरेत कणाशय। भगवान ने कहा परमेश्वर की अध्यक्षता में अपने कर्मफल के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर धारण करने के लिए जीव व आत्मा को पुरुष के वीर्य कण के रूप में स्त्री के गर्भ में प्रवेश करना होता है। तो इसी प्रकार वो क्रम विकास किस प्रकार शरीर की वृद्धि होता आप श्रवण कर करके आए हैं और सारे सीमित समय में वर्णन करना संभव नहीं है। तो इसलिए 10 महीना में जब चेतना किस कौन सा महीने में चेतना आता है 7वें महीने में बच्चे को चेतना आ जाता है तो स्तुति करना प्रारंभ करता है। विशेष रूप में जो 10 महीने के हो जाता है उसके चेतना भी विकसित हो जाता है। तभी पिछले श्लोक में आप प्रार्थना श्रवण की है जिसको प्रभुपाद ने कहते कि जो शिशु को प्रार्थना का यही सारांश है कि 10 महीने के गर्भ में रहकर मां के गर्भ में रहने के समय शिशु जो प्रार्थना करता है उसके सारांश यही है कि मुझे इस अवस्था में रहने दे, भले ही मैं दुखद स्थिति में हूं किंतु बाहर जाकर माया के चुंगल में पड़ने से यह शेषकर है, अर्थात तो मां के गर्भ से बाहर आना नहीं चाहता है, क्योंकि इसको पिछले 100 जन्म के स्मृति, 100 जन्म पहले 100 जन्म में कितने कितने सब कष्ट दुख सहन करके आया था, ये सारे चलचित्र के रूप में उसके सामने दिखाई पड़ता है, भगवान की कृपा से इसको दिखाई देते, देखो देखो पहले कितने सारे जन्म में कितने कितने दुख भोग भोग के आया है, तो इसलिए वो समझ जाता है कि यदि बाहर निकालूंगा तो फिर माया मुझे पकड़ेगा, भगवान की जो बहिरंग शक्ति है वो मुझे कवलित कर लेगा, तो फिर मैं वही बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये चक्र में ऐसे ही भटकते रहूंगा और ये असहनीय कष्ट दुख क्लेश को भोगते रहूंगा, इसलिए वो बाहर निकालना नहीं चाहता है, हैं? मां के गर्भ से बाहर नहीं आना चाहता है, लेकिन भगवान कपिल देव कहते कि माता देवहूति को वो बाहर नहीं आना चाहने पर भी भगवान की जैसे नीति बंधा हुआ है और गर्भ में वैसे स्तुति करते रहता है, लेकिन इसी समय में भी एवं कृत मति गर्भे, इस प्रकार उसकी मति मां की गर्भ में होता होने कारण से स्तुति करते रहता है, लेकिन यह स्तुति को सुनने वाला कोई नहीं होता उधर, अपने कर्मफल के आधार पर पूर्व प्रारब्ध के आधार पर इसको बाहर आना आने के लिए बाध्य होना पड़ता है, क्योंकि कर्मेण दैव नेत्रण, दैव इसको तो वही फल देते जैसे ही कर्म किया है, कर्म के आधार पर इसको फल भोगना पड़ता है, तो ऐसे ही कामना करते रहता प्रार्थना करते रहता, लेकिन जब भगवान की स्तुति करते रहता है तभी प्रसूति काल की वायु अंधे मुंह पड़े हुए उस शिशु को बाहर की ओर धकलती है, बाहर को निकालने के लिए वायु धकलती है जिससे वह जन्म ले सके, लेकिन सभी को ऐसे ही बाध्य नहीं किया जा सकता, जैसे आप पहले क्लास में भी सुने होंगे सुखदेव गोस्वामी की चरित्र 100 के पहले प्रभुपाद तात्पर्य में लिखा था सुखदेव गोस्वामी के बारे में, तो उनको बाध्य करके बाहर निकल जा सका नहीं है, कुछ ऐसे मुक्तात्मा होते हैं मुक्त जीव होते हैं, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने ऐसा ही पिताजी की शुक्राणु को आश्रय करके मां के गर्भ में प्रवेश नहीं किए थे, वो कैसे प्रवेश किए, वो तो पास किसकी तोता थे, वो राधा रानी की तोता थे, अमरनाथ में अमर कथा सुन रहे थे, कौन सुना रहा था, शंकर जी सुना रहे थे पार्वती को, वो वहां बैठकर बड़े दुनिया भर घूमते घूमते राधा कृष्ण के विच्छेद में जब भगवान ने लीला स्मरण कर लिया बड़ा दुखी होकर भटक रहे थे, घूमते घूमते वहां पहुंच के देखे कि यहां चल रहा कथा, तो पार्वती तो 9 स्कंद तक सुने और उसके बाद नींद आ गई, पार्वती तो सो गई है, लेकिन ऐसे ही स्त्रियां लोग कभी कभी सो जाते, लेकिन हमारा कृष्ण भावना में तो आंदोलन की जो स्त्रियां सोते नहीं है, वह पार्वती सो गए, लेकिन पार्वती महान वैष्णवी है, जैसे नारद मुनि ने भी इसको उपदेश दे रहे थे, किसको, प्रहलाद महाराज जो गर्भ में थे मां के गर्भ में, और नारद मुनि ने भी कया उपदेश दे रहे थे, दोनों सुन रहे थे, कौन, कयाधु और प्रहलाद, कयाधु कुछ याद रहा, वो तो मां के गर्भ में रहकर सुन रहे थे, मां के गर्भ में रहकर बच्चे के जो गर्भ में थे तभी सुन रहे थे वो, और ये बाहर में सुन रहे थे माने साक्षात शरीर में बैठकर सुन रहे थे, लेकिन ये भूल गई और सब याद रखे, कौन, प्रहलाद महाराज हैं। अभी ये श्लोक में कहते कि जो बच्चा जब बाहर निकलता है इतने सूक्ष्म द्वार मां की जो गर्भाश्रय से बाहर निकलने के जो सूक्ष्म द्वार के अंदर इतने आने के समय इतनी कष्ट होता था वो सारे स्मृति उसका खो देता है, लेकिन प्रहलाद महाराज को कुछ है सब याद रहा, कैसे याद रहा, किसकी कृपा से, उन्होंने कहा बात में अपने सहपाठी को कहा, मुनि ना अनुग्रहिता, कौन सा मुनि, नारद मुनि की अनुग्रह के कारण ये सब उनको याद रहा, इसलिए कोई जीवात्मा जब तक किसी वैष्णव की कृपा प्राप्त नहीं करता है बद्ध दुनिया से मुक्त नहीं हो सकता, जन्म संसार से मुक्त नहीं हो सकता, तो इसलिए सभी के लिए रूल काम नहीं, जैसे मैं कह रहा था सुखदेव गोस्वामी के बारे में, वो तो वहां कथा सुनकर हाँ हाँ मारते पार्वती तो सो गई, वो बैठकर हाँ, जो शंकर जी ने कहा था ना, तो कोई हाँ नहीं मानेगा तो फिर वो बंद कर देंगे कथा करना। आ सुन लेते जब वो पूरा भागवत कह दिया दसम ग्रंथ, सो प्रभात के बोले कौन सुन, देखे कि हटात नजर आया पार्वती सो गई, उनकी जंगी को प्रसिद्ध देकर सोई हुई है, तो कौन हाँ हाँ मार रहा। अरे ये पक्षी सुन लिया, भगवान शंकर ने आदेश दिया था कि कोई भी जीव आसपास में कथा सुनेंगे नहीं, सभी को ताली मार के भागा दिए थे, कोई नहीं था उधर आसपास में, केवल एकांत में पार्वती को सुना रहे थे। ये कथा सुनने की कोई अधिकारी भी होता है, है? तो इसलिए क्या भागे उसको त्रिशूल गुस्से होकर भागे, ये मेरा बिना अनुमति से यह कथा सुन लिया, पर तो रुद्र अंश भगाए तो भागते भागते आए राकर, ये जम्भाई ले रहे थे कौन, व्यासदेव जी की पत्नी जम्भाई ले तो मुख्य प्रवेश कर गई, बस गर्भ में थे, तो इसलिए वो उनको कथा बात अलग है। लेकिन वो जैसे ही प्रार्थना माने उनकी जैसे इच्छा था सुखदेव गोस्वामी बाहर नहीं आना, ऐसे प्राय सभी जीवों की, जैसे ये भगवान कपिलदेव ने कह रहे जीवा, ये उनकी वर्णना से पता चलता कि सभी जीव की भी यही इच्छा होता कि मां के गर्भ से बाहर निकलना नहीं, वो जानते कष्ट कितने होने वाला है, और फिर वहीं पर रहकर अच्छा है कि सोचता कि मैं यही मां के गर्भ में रहकर यही भजन करते रहूंगा। पहले तो प्रारंभ से करता कि प्रभु मुझे यहां से बाहर निकल दीजिए, मैं भजन करूंगा, लेकिन बाद में जब इसको पूरे स्मृति लगभग सौ पिछले जन्म की स्मृति सब दिखाई पड़ता है पूरा, तो फिर बोलते कि नहीं यही रहना ठीक है, यही रह के भजन करता हूं। लेकिन ऐसे चाहने पर भी जो महान आत्मा है उनकी बात अलग है, सुखदेव गोस्वामी की तो बाप माने जो शक्ति था इच्छा के अनुजाई उनको कोई बाध्य करके बाहर निकल नहीं सकता ये, तो इसलिए वो तो रह गए। कितने साल रहे प्रभुपाद जी ने लेके 16 साल, कोई कोई अन्य मत हो सकता लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य लेके 16 साल तक रहे, और कोई कोई किसी को तो पूरे गर्भ में इतने दिन नहीं रहना पड़ता है, उसी दिन जन्म हो, जैसे यहां पर वर्णन करते हैं, कौन वर्णन कर रहा है कथा को, कपिल देव वर्णन कर रहे हैं, लेकिन वही किसको वर्णन कर रहे हैं, माता देवहूति को, और लेकिन वही माता देवहूति जब कर्दव मुनि की वीर्य को धारण की, पहले उनको प्रसन्न करने के लिए कर्दव मुनि अपने को 9 भाग में विभक्त करते हुए एक साथ 9 बार वीर्यपात की उनकी गर्भ में, तो 9 कन्या जन्म ली। ये कितने दिन की गर्भ में थे, कितने दिन इनके गर्भ में रहे, जिस दिन वो वीर्यपात किए उसी दिन इनकी जन्म हो गया, किनके 9 कन्याओं के हम वर्णन है, जिस दिन श्रीमद भागवत में इसी अध्याय में लगभग पिछले देवहूति की शोक इसी अध्याय में वर्णन है कि जब ये 9 कन्या जन्म हुए तो जिस दिन इन्होंने उनकी गर्भ में वीर्यपात किए तो उसी दिन ये जन्म ली, 9 कन्या एक साथ जन्म ली, तो इसलिए इनको कोई गर्भ में रहना नहीं पड़ा। किनको, देवहूति की जो 9 कन्या पहले जो जन्म हुए थे वो कोई मां के गर्भ में नहीं, बस उसी वीर्यपात करते ही और दूसरे दिन में वो उनके साथ साथ ही वो बाहर निकल आए कन्या के रूप में। तो ये बहुत रियल एग्जाम्पल है, लेकिन मां देवहूति को वर्णन कर रहे हैं कपिल देव, लेकिन मां देवहूति का अनुभव है कि उनकी जो पुत्री पहला जो 9 पुत्री जन्म हुए थे वो ऐसा ही वीर्यपात करते ही बाहर आ गए 9 कन्या, उनको 9 ऐसे 10 महीने गर्भ में रहना नहीं पड़ा था। किनको, देवहूति की कन्याओं को। ये सब रेयर एग्जाम्पल है, बस जैसे सुखदेव गोस्वामी ने कितने महीने तक रहे, कितने साल तक, 16 साल तक, प्रहलाद महाराज कितने साल रहे होंगे गर्भ में, है 60 साल, प्रहलाद महाराज मां के उनके गर्भ में थे, किनकी गर्भ में, कयाधि के गर्भ में, तभी हिरण्यकश्यप चला गया कहां तपस्या करने, हिरण्यकश्यप कितने साल तपस्या किया, 36,000 साल, हिरण्यकश्यप कितने साल, तो देवताओं की वर्ष में कहा जाता कि वो लगभग माने ऐसे ही लगभग 5,000 साल मनुष्य ऐसे ही तपस्या किया, तो हिरण्यकश्यप इतने दीर्घ समय तो तपस्या कर रहा था, तो इसके बीच में देवता लोग ने आक्रमण करके इसके बाल पकड़कर खींच के घिझड़ के ले जा रहे थे, किसको, कयाधु को, नारद मुनि आकर इसको रुकवाए कि देखो हैं, क्योंकि देवता लोग सोचते थे कि हिरण्यकेशु इतना बड़ा राक्षस है और ये जो उसका पत्नी कौन कयाधु, इसकी गर्भ में दूसरा राक्षस होगा, हिरण्यकेशु से बाप से बढ़कर बेटा होता है, उनको पता नहीं था, तो इसलिए बोले कि इसको लेगी रखेंगे बंदी बना के, जो इसका बच्चा जन्म होते ही इसको मार डालेंगे, जैसे कंस का बुद्धि, कंस भी यही सोचा था देवकी का संतान जन्म होते ही मार डालूंगा। तो नारद जी बोले कि तुम देवता होकर राक्षस की बुद्धि कैसे आ गया तुम्हारे पास, हैं? इसको मार नहीं पाओगे, इसके गर्भ में तुम सोच रहे कि हिरण्यकश्यप से बढ़कर राक्षस है, राक्षस नहीं, ये महान भक्त है कौन, और भगवान के द्वारा सुरक्षित है, तुम सारे देव संपूर्ण ब्रह्मांड की समस्त शक्ति को उपयोग करके भी इसको कुछ नहीं कर सकते, किसको, इस बच्चे को वध नहीं कर पाओगे, ये भावना से मुक्त रहो, महान भक्त इसमें इसके गर्भ में है। तो इसलिए उन्होंने नारद मुनि कहा कि मेरे जमींदारी में इसको छोड़ के तुम चले जाओ स्वर्ग में, चले गए नारद मुनि की बात को सुनकर, लेकिन प्रदक्षिणा किए किनको, कयाधु को, क्यों, जब सुने कि महान वैष्णव भक्त उनके गर्भ में है, तो इनको परिक्रमा करके देवता लोग चले गए। लेकिन तभी वो कयाधु ने नारद मुनि को कहे कि देखिए मैं अभी बच्चे को जन्म देना नहीं चाहती हूं, जब तक मेरी पति नहीं है तो उसको सुरक्षा में, सुरक्षा में भयभीत था, कभी ये देवताओं की विश्वास नहीं है, कभी आएंगे फिर मार डालेंगे मेरे बच्चे को, तो इसलिए कहे कि मेरे पति आने के बाद ही बच्चे को मैं जन्म देना चाहती हूं। नारद मुनि उसमें उसको तथास्तु कह दे, ठीक है तुम्हारी इच्छा जैसे। तो कितने दिन तक प्रहलाद महाराज रहे गर्भ में, हम तो सोचते सुखदेव गोस्वामी बहुत ज्यादा रहे, लेकिन इनसे भी ज्यादा कौन रहे, तभी तो नारद मुनि उपदेश देते रहते थे, ये मां के गर्भ में बैठकर वहीं सुन रहे थे, सारे उपदेश को सुनते रहे। तभी प्रहलाद महाराज ने कहते कि अपने सहपाठी को कहते कि जो उपदेश दिए, तो सहपाठी लोग ने पूछे कि प्रहलाद तुम इतनी सुंदर कथा कहां से सुने, तुम तो हमारी साथ में रहते हो, लेकिन ये सारे उपदेश तुमको कहां से मिला दिव्य ज्ञान, 5 साल उम्र में तुम कहां से सीख गए इतने सारे कथा। उन्होंने कहे ऋषिणा अनुग्रहित माम न अधुना अपि अजहात स्मृति है, क्योंकि ये मुनि के ऋषिणा अनुग्रहितम, किस, कौन सा ऋषि, नारद ऋषि के अनुग्रह के कारण, मेरे पति विशेष अनुग्रह के कारण, न अधुनापि अजहात स्मृति, अभी भी तो स्मृति मेरे बनी रही, अभी मैं स्मरण सब कुछ हूं, सब कुछ स्मरण रखा हूं जो नारद मुनि ने मुझे बता रहे थे, मेरे को नहीं बता रहे थे अकेले, मेरे मां को भी बता रहे थे, मां भी सुन रहे थी, लेकिन वो भूल गए। तत्व काल से दीर्घत्वा स्त्रीत्वान मातुर तिरोदधे, मेरे मां स्त्री होने के कारण, और लगता है कि नारद मुनि की इतनी कृपा उनके प्रति नहीं थी, किनके प्रति, कयाधु के प्रति, जितनी कृपा किनके प्रति था, प्रहलाद के प्रति, नारद मुनि की इच्छा था कि प्रहलाद इसको स्मरण करें, इनके स्मरण में श्रुति बने रहे, इसलिए कृष्ण को कौन प्राप्त कर सकता है ना, जिसको कि शुद्ध भक्त ने चाहता है, कृष्ण से तुम्हार, कृष्ण दीते पार तुम्हार सकती अच्छे, आमित कांगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे। जब किसी शुद्ध भक्त ने हमारे लिए प्रार्थना नहीं करेगा, हम कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, हम स्वयं प्रयास करके सोचेंगे कृष्ण को प्राप्त कर लेंगे, यह संभव नहीं है। इसकी एक उदाहरण है प्रहलाद महाराज, वो कहते कि मेरे नहीं, मुनि की विशेष कृपा था, भक्ति रसामृत सिंधु में बार बार भक्ति यही दो ही बात कहा जाता है, किसी वैष्णव की कृपा हो या भगवान की कृपा, दोनों की कृपा के बिना केवल साधन करने से कोई सफलता को हासिल नहीं कर सकता है। हम साधन तो करेंगे गुरु आदर्श में, लेकिन साथ साथ कृपा के प्रति आशा रखना चाहिए, इन वैष्णव की कृपा के बिना कोई भी ये भवसागर से मुक्त नहीं हो सकता है, जन्म मुक्त संसार से मुक्त नहीं हो सकता है। तो इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य ने जो तात्पर्य बताते कि इसलिए सभी को विशेष रूप में ध्यान रखना चाहिए कि चारों दुख के बारे में, कौन सा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, मां के गर्भ में 10 महीना तो रहना पड़ता है, लेकिन सभी के लिए कंपलसरी नहीं है, किसके लिए ज्यादा भी हो सकता है, सुखदेव गोस्वामी के लिए, प्रहलाद महाराज के लिए बहुत लॉन्ग टाइम रहे, वो वहीं रहकर अपने भजन कीर्तन में व्यस्त रहे हैं प्रहलाद महाराज। सुखदेव गोस्वामी तो ब्रह्मवादी थे, बाद में आए, फिर वो उनको भेजे, मैंने जन्म लेकर ही भाग गए सीधे, अपने पिताजी की बात में नहीं विश्वास किए, व्यासदेव जी ने कहे कि बेटा निकालो, तुम मां कितनी कष्ट सहन कर रही है, 16 साल बीत गया तुम निकालता नहीं, निकालो तुमको माया बांधेगे नहीं, सुखदेव गोस्वामी तुम तो खुद ही माया में हो, तुम्हारा बात में क्या मैं भरोसा करूंगा, व्यासदेव जी माया में है कैसे, जो सुखदेव गोस्वामी बाहर निकले भी जन्म माँ की गर्भ मनी, वो तो वास्तविक बात में नहीं निकले, बात में फिर वो गए बोले जाओ जो माया में नहीं है, जो मायाधीश है उसको बोला किला, वो बोलेगा तो बाहर निकल, ऐसे नहीं निकालूंगा तुम्हारी बात में। तो उन्होंने गए मायाधीश को बोला किलाए, किसको, कृष्ण को, भगवान कहने पर उनको विश्वास हो गया तो बाहर निकल आए। इसलिए जो भक्त महान भक्त होते वो स्वेच्छा से आते हैं, इनकी जन्म मरण उनके हाथ में है, साधारण जोगी के हाथ में ही रहता है। भक्तों की बात, शुद्ध भक्तों की बात में क्या कहा जाए, वो चाहेंगे तो माँ की गर्भ में रह सकते हैं, चाहेंगे तो बाहर भी आ सकते हैं, कैसे भी प्रकट हो सकते हैं। जैसे भगवान भी अगर माँ की गर्भ में रहते हैं, कौन, कृष्ण आए देवकी की गर्भ में, इसका मतलब नहीं कि वो जो माँ की गर्भ से निकल रहे थे तो उनको ऐसा ही यंत्रणा हो रहा था जैसे साधारण बद्ध जीव को यंत्रणा होता है, इतना यंत्रण होता है कि स्मृति खो देता है, तो सब कुछ स्मरण उसकी खो जाता है पूरा, जैसे कमा में आ जाता, कमा जैसे कहते ना, कोई बहुत बड़ा शक लगने से व्यक्ति को, आज भौतिक दुनिया में देखते हैं भौतिक स्तर पर क्या होता है, कहते कि कमा में आ जाता है तो उसको कुछ स्मृति नहीं रहता है, लेकिन ऐसा सबके नहीं, भगवान जो माँ की गर्भ दिखाई, ऐसे दिखाई पड़ता है माँ की देवकी के गर्भ से भगवान बाहर निकले, वामन देव अदिति की गर्भ से आए, ये दिखाई पड़ता है। बा कपिल देव ने भी किसी गर्भ से आए, देवहूति की गर्भ में, लेकिन ऐसा भगवान को कोई जंत्रणा नहीं होता है जैसे साधारण बद्ध जीव को होता है। प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्ममाया, भगवान ने गीता में कहते कि आत्ममाया, मेरी आत्ममाया जोगमाया की शक्ति से मैं अपने स्वेच्छा से वा जन्म लेता हूं, वा लीलाओं को प्रकट करता हूं। उसी प्रकार उनकी जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको भी ऐसा ही गर्भ यंत्रणा भोगना नहीं पड़ता है, वो भी भगवान की इच्छा से संसार में आते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने आए, वो किसकी इच्छा से, गौरांग महाप्रभु की इच्छा से है। जो मुक्तात्माएं होते हैं उनको भी ऐसा ही कष्ट नहीं भोगना पड़ता है, वो अपनी इच्छा से ही माँ की गर्भ में रहते हैं, अपनी इच्छा से ही बाहर आ सकते हैं। वो उनको केवल कंट्रोल करने वाला एक व्यक्ति होता, कौन, भगवान। वो जानते हैं कि तब इच्छा मते जीवेर जीवन जन्म मरण समृद्धि निपात दुख सुख संघटन। भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि तब इच्छा मते, हे प्रभु आपकी इच्छा से ही, तब इच्छा मते जीवेर जन्म मरण, जन्म और मरण ये सब आपकी इच्छा से ही होता है, कैसे समृद्धि निपात दुख सुख ये सब आपकी इच्छा से ही जीव को प्रकट नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि शरणागत जीव होने के कारण उनके सुख दुख सब भगवान के हाथ में ही बंधा रहता, भगवान जैसे चाहते हैं ऐसा ही होता है। इसलिए महात्मनांस्तु पार्थ दैवी प्रकृति आश्रिता भजंती अनन्य मानस ज्ञानत्वमंग भूतादिम अव्ययम्। इसलिए जो महान भक्त होते हैं वो भी कौन सा शक्ति के अंडर में रहते हैं, महात्मनांस्तु पार्थ दैवी प्रकृति, भगवान की अंतरंग शक्ति के माध्यम से, भगवान के सो कार्यकलाप अंतरंग शक्ति के द्वारा बड़ा जोगमाया के द्वारा परिचालित होता है, उसी प्रकार उनकी सब जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी भी सारे कार्यकलाप कैसे होता है, जोगमाया के द्वारा परिचालित होता है। श्रील प्रभुपाद ने कहे कि मेरे जीवन में ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं कृष्ण को याद न रखा हो, भगवान को भूल गया हो, ऐसा कोई समय किसी भी समय मेरा नहीं बीता, कई एक मुहूर्त ऐसा नहीं बीता जिस समय मैं कृष्ण कॉन्शियस नहीं था। ये नित्य मुक्त जीव है, किसी नित्य मुक्त जीव किसी भी स्थिति पर भगवान के स्मरण कर सकते हैं, किसी भी स्थिति पर उनके भगवान स्मरण रहते हैं, यही फर्क है। और बद्ध जीव भूल जाता है, मां के गर्भ से निकलते ही वो सब भूल गया, फिर संसार में इनको बहिरंगा शक्ति कवलित कर लेता है। जैसे भगवान को इनकी बहिरंगा शक्ति कवलित नहीं कर सकता, उसी प्रकार उनके शुद्ध भक्तों को भी बहिरंगा शक्ति कवलित नहीं करता, उनकी भी कार्यकलाप सब कुछ किसके द्वारा परिचालित होता है, जोग माया की शक्ति के द्वारा, दिखाई पड़ता है एक जैसे लेकिन एक नहीं है, प्रभुपाद जी के कार्यकलाप और हमारा कार्यकलाप में बहुत अंतर है, नारद मुनि के कार्यकलाप, प्रहलाद महाराज के कार्यकलाप, लेकिन सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मवादी थे, गर्भ में बाहर निकालकर आए फिर भी वो जन्म लेते ही भाग्य जानते थे कि सारे जगत मिथ्या, जगत मिथ्या ब्रह्मन सत्य, भागे पीछे पीछे हा पुत्र है कहकर चले व्यासदेव। और जब निकले जन्म से ही वो कितने साल उम्र हो गया था उनका, 16 साल गर्भ में थे, जन्म से ही वो 16 साल के लड़के बस चले नंगे सीधे, शरीर के प्रति ध्यान नहीं, शरीर का स्मृति नहीं उनकी, देह स्मृति नहीं जार संसार बंधन कहां तार। नरोत्तम दास ठाकुर को जिसको अपने शरीर का ही श्रुति नहीं है उसको संसार का बंधन कहां है, वो यहां तक ही जानता नहीं कि मैं शरीर में पुरुष हूं कि स्त्री हूं, वो तो सोचता कि मैं ब्रह्म ही हूं बस। जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, वो नहीं स्मरण रहता कि मैं पुरुष हूं कि स्त्री हूं, ये भावना उसके पास नहीं होता है। सुखदेव गोस्वामी पास में ये चिंतन नहीं था, वो जानते मैं ब्रह्म हूं इसलिए चले बस शरीर से निकले बस चले, उनके शरीर के प्रति ध्यान नहीं, मैं क्या है लिंग शरीर के प्रति उनके ध्यान नहीं था। इसलिए वो जाते रहते, देवकन्या लोग ने स्नान कर रहे थे सो उलग्न नंगे स्नान कर रहे थे, सुखदेव गोस्वामी 16 साल के जवान लड़का जा रहे थे, कोई किसको विकार नहीं हुआ, सो ऐसे ही ना अपने जैसे स्नान कर रहे थे बराबर ऐसा ही रहे, क्योंकि जानते थे कि ये व्यक्ति को कुछ फर्क नहीं पड़ता है कौन स्त्री है कौन पुरुष है, उसको ये ज्ञान भी नहीं, वो तो ब्रह्म के संपूर्ण रूप में ब्रह्म में तल्लीन है। लेकिन पीछे पीछे आ रहे थे कौन व्यासदेव जी को देखते ही तुरंत अपने सारे साड़ी पाड़ी वो शरीर को ढांकने लगे, बड़ा आश्चर्य होगी बोली अरे मेरे जवान लड़का गया उसको कुछ नहीं हुआ इनको कुछ विकार नहीं आया, मैं बुढ़ा आदमी जा रहा हूं तो ये सब अपने कपड़ा ढंकने लगे है। बोले क्या है, व्यासदेव ने खड़ा होकर पूछे क्या हुआ कैसे मेरे जवान लड़का इतनी यंग लड़का गया तुम लोग ऐसे नंगे ऐसे खुले शरीर में स्नान कर रहे थे, लेकिन अभी मैं बुढ़े आदमी जा रहा हूं उसको लज्जा आ गया शरीर कपड़े ढकने लगे क्या उसके, कहे कि यही है कि आप तो माया में हो, माया में नहीं है आपको अभी तक ये फर्क है ये ज्ञान है कि मैं पुरुष हूं और स्त्री है, लिंग शरीर में भेद आप देख रहे हो, लेकिन वो लिंग शरीर में भेद नहीं देख रहा कौन सुखदेव गोस्वामी, जानता कि है ब्रह्म अहम ब्रह्मस्मि बा मैं कृष्ण की नित्य दास। बाद में वो भागवत के श्लोक सुने तो फिर उनको याद आया है। दो श्लोक बाद में तो भाग रहे थे लेकिन वो व्यासदेव ने तो जितने प्रयास किए वापस नहीं आए, लेकिन व्यासदेव जी ने प्रयास किए फिर इनको वापस लाने के लिए, इसलिए अपने शिष्यों को श्लोक सिखाकर भेजे हैं। कौन सा श्लोक सिखाया, दो श्लोक सिखाया था, एक श्लोक जिसमें भगवान की विशेष करुणा की वर्णना हुई है, अह वकी अंश स्तन कालकूटम जिंघाशय अप्यसाध्य वो श्लोक, और दूसरे बरहा पिडंग नटवर वपु कर्णयो कर्णीकारम बिभ्रदवासा कनक कपिसं वैजयंती च माला रंध्रान वेणुअधर सुधया पुरयन गोपवृंदई वृंदारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद गीत कीर्ति। दोनों एक में भगवान की गोचारण लीला प्रारंभ करे, भगवान वृंदावन के जंगल में प्रवेश कर रहे हैं ग्वाल बाल सखाओं के साथ, तो ये दोनों श्लोक सुन के ही उनको पूरे आकृष्ट हो गए, क्योंकि ब्रह्मवादी ने जो माया जो निर्विशेषवादी दो प्रकार के होते हैं, एक ब्रह्मवादी दूसरे मायावादी हैं निर्विशेष। जो ब्रह्मवादी होते हैं ये कृष्ण भगवान भक्तों की निंदा नहीं करते हैं, इसी कारण से भगवान की जन्म कर्म लीलाओं को श्रवण करने से सुप्त भक्ति उद्रेक हो जाता है हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी उसी कैटेगरी के थे, कौन सा कैटेगरी का, ब्रह्मवादी थे, वो निंदा नहीं करते थे। मायावादी क्या करते, निंदा करते, मायावादी कृष्ण अपराधी है, इसलिए ये कृष्ण की निंदा करते हैं, कृष्ण का और भक्तों का भी निंदा करते हैं, निंदा करने के कारण वैष्णव अपराध करने के कारण इनको भक्ति नहीं मिलता है। लेकिन ब्रह्मवादी वैष्णव अपराधी नहीं होते हैं, वो न्यूट्रल रहते, तो इसीलिए भागवत में श्लोक कहा गया आत्मा रामश्च मुनय निर्गंथो अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतु की भक्ति मीथो भूत गुणोहरी। जो आत्माराम पुरुष भी सुखदेव गोस्वामी जैसे वो भी जब भगवान की हरि कथा को श्रवण करते हैं मिथ्यभूत गुण हरि भगवान हरि के गुणों को सुना श्रवण करते हैं है? उनको भी श्रवण करने की लालसा उत्पन्न हो जाती है भगवान की हरि कथा को श्रवण करने में, वो भी आकर्षित हो जाते हैं, तो इसलिए वो आकर्षित होकर फिर भक्त बन गया उस कथा सुनने के लोभ में, फिर उन्हीं के साथ आके जहां गए थे वहीं पहुंच गए, फिर व्यासदेव ने बटाकर सुनाया सारे कथा। तो इसलिए ये जो श्लोक में ये जो भाव दरा बता जा रहा है कि 10 महीना की उम्र हो जाता जो बीत जाता मां की गर्भ में हो जाता, तो उसको वो चाहता कि नहीं आने के लिए जीव प्रार्थना करते रहता कि नहीं मैं बाहर नहीं जाना चाहता हूं, मैं यहीं पर रहकर आपकी भजन करते रहूंगा प्रार्थना करते रहूंगा, बाहर जाते ही आपकी बहिरंग शक्ति मुझे पकड़ लेगा, लेकिन ये प्रार्थना करने पर भी कोई सुनने वाला नहीं होता है। लेकिन ये केवल जो शुद्ध भक्त कुछ किसी की तपस्या है बा कुछ सुकृति है जैसे सुखदेव गोस्वामी है बा प्रहलाद महाराज है, तो इनके प्रति ये नियम काम नहीं करता है। है कयाधु तो प्रहलाद महाराज को इतने समय धारण किया किसके आशीर्वाद के बल पर, नारद जी के आशीर्वाद के बल पर। सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार अपनी योग शक्ति के आधार पर, वो साधारण जीव नहीं थे, व्यासदेव जी की वीर्य से उनकी ऐसे उत्पन्न नहीं हुआ, तो अपने स्वेच्छा से गर्भ में प्रवेश किए थे। तो इसलिए कभी कभी ये रेस्ट्रिक्शन, लेकिन हम जैसे बद्ध जीव के लिए ये लागू है, कोई रह नहीं सकता, चाहने पर भी भगवान की जो प्रकृति बाध्य करता है हमको, जो प्रसव वायु धक्कल कर बाहर निकाल देता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रत्येक जीव को स्थिति को स्मरण करें, प्रकृत में बुझे समझे कि तात्पर्य के अंत में प्रभुपाद नहीं लिखते कि भगवत गीता में भगवान संकेत करते हैं कि जो आध्यात्मिक चेतना में प्रगति करने के लिए उत्सुक हैं उसे जन्म मृत्यु और रोग तथा जरा इन चार पीड़ाओं का विचार करना चाहिए। ये चार पीड़ा प्रकृत में कष्ट यही चार है, उसको विचार करना चाहिए। इतिहास में हम देखें, आज भी पढ़ते हैं, इतिहास में पढ़ते हैं गौतम बुद्ध की कथा पढ़ते ना, गौतम बुद्ध पहले नेपाल के राजा शुद्धोधन के पुत्र थे, इतिहास में पढ़ रहे हो, चलो बोलते पुराण में ऐसी कहानी है, लेकिन इतिहास में स्कूल में पढ़ा जाता है, शुद्धोधन के पुत्र थे कौन, गौतम बुद्ध, उनका नाम था सिद्धार्थ, शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ थे, राजपुत्र थे, राजमहल में हमेशा अंतपुर में रहते थे, बाहर कभी निकलते नहीं थे, इनको संसार क्या पता ही नहीं था, कितने दास दासी उनके पीछे लगे हुए थे, इनके सेवक सेवक, तो कोई दुख क्या होता कुछ पता ही नहीं था, लेकिन एक बार उनको इच्छा, आस्ते बड़े हो गए, जवान हुए, फिर इनको इच्छा हुआ कि थोड़ा बाहर, कितने कमरे के अंदर एसी कमरे में बैठते बैठते कितना टाइम बैठेगा व्यक्ति, थोड़ा बाहर भी घूमने के लिए इच्छा प्रकट हुआ, बाहर दुनिया देखने के लिए, तो इनके लिए बहुत सुंदर रथ सजावट किया गया, रथ में बैठकर रथ सारथी रथ चलाते चलाते आगे ले गया, तो उनको ये चारों दृश्य दिखाई पड़ा, क्या देखे सबसे पहले, क्या देखे हैं, कौन पढ़ा इसको इतिहास में, पढ़े कोई नहीं पढ़े, पहला बूढ़ा व्यक्ति, चलो कुछ भी मतलब बूढ़ा व्यक्ति देखा पहले, ऐसे डंडा ऐसे पकड़ते पकड़ते ऐसे ही आस्ते आस्ते ऐसे बेंड हो गया, कमर भी ऐसा ही चल रहा, ऐसे व्यक्ति कभी देखे नहीं थे कि बोले वो पूछे, सिद्धार्थ पूछे कि ये कौन है, सारथी पूछे ये व्यक्ति कहे ऐसा क्यों चल रहा, क्या कौन है, क्या हुआ इसका, बोले कि बुढ़ा हो गया, वृद्ध व्यक्ति हो गया, उसको 70 साल उम्र हो गया, इसलिए पास शक्ति नहीं है चलने के लिए, उसके शरीर क्षीण हो गई और इसलिए वो लाठी के सहारा पर चलता है। बोला क्या सभी को एक दिन ऐसे बुढ़ा होना पड़ता है, हमें भी ऐसे एक दिन वृद्ध हो जाना पड़ेगा, तो बोले हाँ सभी को ऐसे ही वृद्ध होना पड़ेगा, देही न अस्मिन जथा देहे कुमारंग जौवनंग जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र नमयति, ऐसे कुमार जौवन जरा ये तो आएगा, जरा व्यक्ति वृद्ध व्यक्ति को देखे तो सोचने लगे अच्छा मैं भी एक दिन ऐसे बुढ़ा हो जाऊंगा। आगे बढ़े और एक दृश्य देखे, क्या एक हॉस्पिटल में ले जा रहे, किसको चिल्ला रही है बहुत जोर से, चित्कार हो रही, पेन हो रहा है उसके शरीर में, बहुत यंत्रणा हो रहा है, कुछ उसके कुछ भी बीमारी बहुत कष्ट हो रहा है, तो चित्कार कर रहा है उसको, ऐसे उस समय तो एम्बुलेंस था ना ऐसे खटिया में, उसको लेकर सहन के ऐसे चार व्यक्ति ऐसे लेके जा रहे हो, चिल्ला रहे, क्या हुआ इसको, क्यों चिल्ला रहा है इतने, क्या हो रहा है इसको, बोला इसको यंत्रणा हो रहा, बीमार है इसके रूप में, इसको रोग व्याधिग्रस्त कर लिया। बोला क्या ऐसे ही सब कुछ रोग व्याधि हमको भी होगा ना क्या, भाई ये किसको नहीं छोड़ता है, आप राजपुत्र होने पर भी आपको भी एक दिन ऐसे रोग व्याधि आएगा, ग्रस्त करेगा, आपको भी ऐसा ही कष्ट अनुभव होगा एक दिन। तो बोले अच्छा इसे भी यंत्रणा भी अनुभव करना पड़ता है, रोग व्याधि भी ग्रस्त हो जाता है शरीर, तो और थोड़ा चिंतित हो गए और थोड़ा आगे गए, क्या देखे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, चल रहे लेकर सबको लेकर चल रहे हैं। बोले ये क्या हुआ, नहीं ये मर गया ये डेथ हो गया इसका, इसको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। बोला क्या डेथ हो गया, मेरे को भी ऐसे मरना पड़ेगा एक दिन, मेरा शरीर भी ऐसे ही। बोला हाँ आप शरीर नहीं हो, आप कौन है, आत्मा हो, आप आत्मा हो, आपको ये शरीर किस टेम्पररी कुछ दिन कुछ काल के लिए कुछ समय के लिए दिया गया, इसमें रहोगे, शरीर बुढ़ा हो जाएगा ऐसे एक दिन, आप भी सभी को मृत्यु मुख में जाना पड़ता है, जो आदमी मर जाता है सभी को भगवान की याद होता है, तभी राम नाम सत्य, राम नाम सत्य तभी याद होता है, ले जाते हैं श्मशान में, तो बड़ा चिंतित हो गया, अच्छा मुझे भी ये शरीर को एक दिन त्यागना पड़ेगा। तभी उनको ध्यान आया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं और शरीर में कुछ अंतर है, मैं कुछ कोई कुछ दूसरा हूं और ये शरीर कुछ अलग है, ये पांच भूत से बना हुआ, पांच भूत है पांच भूत कवल आपका साथ में रह रहे हैं, पांच भूत के साथ आप रह रहे हो। अब तो अभी एक भूत प्रकट हो जाता आप डर जाते हो, लेकिन साथ साथ पांच भूत के साथ रहते, हमेशा हमेशा के लिए पांच भूत के साथ संग में रहते, लेकिन भूल जाते हो हैं। और कोई कहे कि भूत है उधर, तो फिर वो जाएगा नहीं वो रास्ता में भूत, लेकिन पांच भूत साथ में लेके चलते हमेशा, पांच पंचभौतिक से। बोले अच्छा ये शरीर, फिर पता चला गया उनको कि शरीर को एक दिन नाश होने वाला है, मृत्यु आता है। बड़ा चिंतित होकर थे, तो आगे देखे और थोड़ा गए तो एक व्यक्ति बड़ा करताल, बड़ा धन जोर जोर से बुलाते हुए नाचता है, गाता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, नाच रहा गा रहा है, जंपिंग कर रहा। बोला ये क्या कर, ये क्या है? बोला ये बोला हरे कृष्ण वाले है, नाच रहा है गा रहा है। इसको कोई दुनियादारी का चिंता नहीं है, ये तो इसके लिए जन्म मृत्यु सब समान है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो नाच रहा है गा रहा। बोला ये तो बड़ा आनंद है, हैं? तो समझ गए, छोड़ दिए घर, छोड़ दिया ना। वो शक्त्यावेश अवतार, यदि वो भगवान स्वयं विष्णु तत्व में नहीं है, वो बुद्ध देव, लेकिन शक्त्यावेश अवतार माने जाते हैं, जीव है, लेकिन भगवान की विशेष शक्ति इनको क्वालिफाइड बन गए, इनको शक्ति दिया गया कि ये जीव हिंसा को रुकने के लिए, दस अवतार में एक अवतार माने जाते हैं, लेकिन वो शक्त्यावेश अवतार है। तो लेकिन आप इसको सब प्रभुपाद कहते कि इसको समझ जाना यही बुद्धिमानी के काम है, हैं? बार बार जन्म मुक्त संसार में से भटकते रहता जीव, लेकिन यदि एक जन्म केवल समझ जाएगा कि प्रकृति में क्या कष्ट है, प्रकृति समस्या क्या है, प्रकृति समस्या ही है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चार समस्या है, इसको समाधान कैसे करेगा, उसी को सीरियसली सदगुरु के शरण में आकर यदि वो समझ जाएगा और इसको जीवन में उतारने के लिए प्रयास करेगा भक्ति के मार्ग को। इसलिए प्रभुपाद ने यही सलाह देते कि यही चारों दुख है, जरा इन चार पीड़ाओं का विचार करना चाहिए। भौतिकवादी भले ही अनेक प्रकार से प्रगति कर ले, किंतु वह संसार के इन चार प्रकार के कष्ट को रोकने में असमर्थ है। आए? हम भक्त बने हैं सब, हम उसको करें क्या, हम भक्त हैं, है ना, शास्त्र से मानते हैं, गुरु निर्देशन में है, चार प्रकार के कष्ट कैसे मुक्त कैसे आप मिटाएंगे, चार कष्ट आपको पता चल गया, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसमें से सब दो कष्ट ज्यादा कौन सा अधिक, कौन सा, जन्म मृत्यु, इसको कोई टाल नहीं सकता। लेकिन अगर चार प्रकार के कष्ट जो और भी रोग व्याधि कष्ट, चारों प्रकार के कष्ट से कैसे मुक्त होगा, कैसे जीव मुक्त हो सकता, भगवान की शरण लेना इतने आसान है, हैं? हम डेली चरणामृत लेते हैं, चरणामृत लेने के समय क्या बोलते हैं, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पाद कपित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, कोई जगह पर कोई जगह शिरसी धारमा, हम सिर में धारण करता हूं। चलो लेकिन ये बात कहा गया कि केवल भगवान विष्णु के चरणामृत लेने से ही ये दुख मिट जाता है, कौन सा, अकाल मृत्यु हरण हो जाता है, ये अकाल मृत्यु हरण सर्व व्याधि विनाशनम। फिर होटल के में क्या जलते, वो बोलते कि हमारा किचन में एक सब्जी बनता है उसका नाम ही क्या है, होटल सब्जी। फिर भाई होटल सब्जी कौन, एक बार डालमा लेके गया हमारा घर पर, बोलते कि होटल का सब्जी, होटल सब्जी क्या होता है, हैं? तो हम भक्त है लेकिन विश्वास है, शास्त्र का वचन झूठा है कि हमारा विश्वास में कमी है, हैं? शास्त्र कहता है कि भगवान विष्णु की जो चरणामृत यदि पान करोगे आपको किसी प्रकार के रोग व्याधि नहीं हो सकता है, मृत्यु का भय भी नहीं, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पाद कपित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, जन्म मुक्त संसार से भी व्यक्ति मुक्त हो, अकाल मृत्यु जन्म मुक्त संसार से मुक्त होना, इसे केवल भगवान की चरणामृत को विश्वास के साथ यदि पियोगे, इसकी चरणामृत की महिमा कितनी पद्म पुराण में कई कहानी के माध्यम से वर्णन की गई है, केवल चरणामृत पान करके ही, इसीलिए वो शरीर त्यागने के समय उसे चरणामृत लेकर मुख में डालते हैं, लेकिन ये पूर्ण विश्वास के साथ हम इसको ग्रहण करेंगे, सालग्राम की चरणामृत, सालग्राम भगवान विष्णु से अभिन्न, दूसरे में डाउट हो सकता है लेकिन इसमें डाउट करने के नहीं, किसमें, सालग्राम, इनको प्रतिष्ठा करना नहीं पड़ता है। श्री विग्रह को ठीक उचित रूप से यदि प्रतिष्ठित नहीं किया जाता है, मंत्र द्वारा इनकी प्रतिष्ठित नहीं हो पाते, तो फिर वो उसमें डाउट रहता है कि उन चरणामृत में है कि नहीं भगवान के चरणामृत। यदि किसी महान शुद्ध भक्त के हाथ से बा कोई स्वयं प्रकटित विग्रह है प्रतिष्ठित होते तो ठीक है भगवान से अभिन्न, लेकिन विग्रह में डाउट है कि प्रकृति में वो भगवान के प्रतिनिधित्व करते कि नहीं, लेकिन सालग्राम में कोई डाउट नहीं है, इनको प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, ये स्वयं विष्णु है, है? तो इसलिए भगवान के चरणामृत को केवल आश्रय करोगे तो आपके उद्धार हो जाएगा। यदि नियमित केवल विश्वास रखोगे, पूर्ण विश्वास के साथ, हमको विश्वास है, इतने आसान नहीं है, हम कहते हैं भगवान के शरणागत हो जाने से, तो भगवान की शरणागत ही से स्टार्ट करो ना। शरणागत हो जाए छाड़ दो, छोड़ दो के मेडिसिन खाना, नहीं छोड़ेगा, ये इतने आसान नहीं है। शरणागत है तो फिर चलो, प्रभुपाद जी ने जो बीमार थे तो अंतिम समय में जाते थे एलोपैथिक डॉक्टर को ले आने के, प्रभुपाद जी ने मना किया एलोपैथिक मेडिसिन नहीं लेते थे, अमेरिका से डॉक्टर लेकर आए, बोले नहीं है, फिर ऐसे लोग ने प्रभुपाद जी मेडिसिन नहीं लेते थे तो वो क्या करते थे, दूध के साथ जूस के साथ मिलाकर उसको पाउडर बनाकर पीने, तो प्रभुपाद जी पीने तो पता लग जाता, बोलते क्या क्या कर रहे हो, मुझे ज्वर पिला रहे हो, तो रिकॉर्डिंग हो गया, हाँ सोचे कि ज्वर पिला दिए प्रभुपाद जी। तो मेडिसिन को प्रभुपाद ने एलोपैथिक मेडिसिन को क्या कहते थे, जहर है, प्रभुपाद ने एलोपैथिक मेडिसिन नहीं लेते थे, स्वयं आयुर्वेदिक को थे, तो आयुर्वेद कम से कम आयुर्वेद का मेडिसिन स्वयं जानते थे, सब पूरा नॉलेज था उनको। प्रभुपाद जी कितने दो दो हार्ट अटैक हो गया, आज कोई हार्ट का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता तो पहुंच जाते कहां, प्रभुपाद जी कौन था उसके जलजूत के जहाज के बीच में दो दो बार हार्ट अटैक हुआ है, कोई डॉक्टर था उधर देखने के लिए है, कौन देखभाल कर रहा था, तीसरी बार कौन दिखाई पड़ा, प्रभुपाद सोचे कि तीसरी बार हार्ट अटैक होता समाप्त तो हो जाएगा, लेकिन आया कौन दिखाई पड़े, भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं, देखिए भिन्न भिन्न रूप में भगवान ने उसी जहाज को चला रहे थे, डरो मत मैं हूं, भगवान ने स्वयं देखा है। प्रभुपाद ने इतनी भी हार्ट अटैक हुआ था, और केवल ये दो तो हम सुनते हैं, इनकी जो सेवक है सुतकीर्ति प्रभु और अन्य, वो कहते कि दो बार नहीं कई बार प्रभुपाद जी का हार्ट अटैक हुई है, न्यूयॉर्क में भी हुई कई बार बाद में भी, लेकिन प्रभुपाद ने कोई बात को छुपा छुपा के रखते थे बात, क्योंकि शिष्य लोग फिर बोलेंगे एलोपैथिक लाओ डॉक्टर के पास जाओ, हैं प्रभुपाद नहीं कहते थे, हैं कहते थे कि मेरे के शिष्यों को थे दो बात करना, मुझे कभी किसी मेरे शरीर को कभी काटना नहीं, ऑपरेशन नहीं करना, कभी मेरे शरीर को काटना नहीं, और एलोपैथिक मेडिसिन नहीं चाहते थे, हमेशा आयुर्वेदिक मेडिसिन कभी ज्यादा, प्रभुपाद जानते थे वो हार्ट के लिए मकर ध्वज कोई इस कंपनी था और कुछ टैबलेट वो ही आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते थे, कभी नहीं लेते थे एलोपैथिक, अंतिम समय में कितने बाध्य करने पर भी नहीं, जो शिष्य लोग ने रोने लागे के बोले ठीक है कबीराज को बुला लो इसको नरोत्तम बाला को, इसलिए फेमस हो गया वो आज का वो इस्कन के नाम से क्या बिल्डिंग उसकी बहुत कुठी बन गया है, हॉस्पिटल खोल दिया उधर कहीं, केवल अंतिम समय में प्रभुपाद जी को थोड़ा देखने के लिए आया, प्रभुपाद जी बोले देखो इसे नरोत्तम को बुला लो, जो रोने लागे सब लोग तो आ गया था देखने के लिए, प्रभुपाद जी वो मेडिसिन थोड़ी उसका पर भरोसा रखते थे, किससे भरोसा रखते थे, कृष्ण बलराम। प्रभुपाद ने जब शिष्य कही देखो ये मेरी ठीक नहीं कर रहा मुझे कौन, कृष्ण बलराम के चरणामृत, अंतिम समय तक आप देखो तो वीडियो देने पर अंतिम समय प्रभुपाद ने प्रत्येक दिन आते थे डेटी के दर्शन करने के लिए, वो किसमें बैठ के पालिंग में बैठा कर शिष्य लोग आते थे, और जब भी हाथ चलने के लिए भी मुख और शक्ति नहीं था ऐसा, फिर भी मुख आंख करते थे और पुजारी ऐसे मुख में चरणामृत डालता था, कहते थे कि ये कृष्ण के चरणामृत जब मेरा काम नहीं कर रहा ये मेडिसिन मेरा क्या करने वाला है। प्रभुपाद हंसते देखे कि देखो ये जब कृष्ण बलराम चाह रहे मुझे ले जाने के लिए कहा उनके नित्य लड़ा में, और उनको जरूरत पड़ गया मेरा, मैं वहां मुझे कृष्ण बलराम चाहते कि वापस आओ इधर, हो गया तुम्हारा वहां ड्रामा, वहां जितना दिन तुमको भेजे थे वो हो गया काम, इधर वापस आओ, जो कृष्ण बलराम मुझे चाहते वहां वापस जाने के लिए तुम्हारे मेडिसिन कहां से मुझे रुक लेगा। तो इसलिए शुद्ध भक्तों की जो जन्म मृत्यु ये सब किसके हाथ में रहता है, तब इच्छा मते जीवेर जन्म मरण है, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर शरणागत के भजन में कहते हैं है, भक्ति विनोदवती दीन किंचन तुम्हारा इच्छा है तार जीवन मरण, चलो भक्तों के तो जीवन मरण किसके हाथ में रहता है, भगवान के हाथ में, भगवान के चरण में समर्पित रहता है। इसलिए उसको उसका कंट्रोल ऐसे ही महामाया के द्वारा नहीं होता, जैसे साधारण जीवात्माएं रहते मां की गर्भ में 10 महीने के बाद फिर उनको धकले की वायु से नहीं चाहता निकलने, पर वायु उसको धक्कल के बाहर निकाल देता है और उसकी स्मृति सब खो देता है, इतनी कष्ट जंत्रणा से बाहर आता है सब भूल जाता है, जो कुछ गर्भ में सुना था देखा था वो सब भूल गया। अब बाहर में आकर बाहर निकल गया तो बाहर आगे पर क्या होता है आगे फिर बताएगा हैं? हैं? इसके भक्ति मैंने वो भजन में कहे भक्ति विनोद ठाकुर, जीव जागो जीव जागो गौराचंद्र बोले, जीव जागो कत निद्रा जाओ माया पिसा चीर कोले, कत निद्रा भजी बबलुआ से संसार भीतरे, भजी बबलुआ भूलिया रहिले तुमी अविद्या बरे, भूमि रहिले तुमी तुमारे लई ते आमी हरनु अवतार, तुमारे लई ते आमी आमी बिना बंधु आर के आछे तुमार, आमी बिना एने औषधि माया नासी बार लागीने औषधि माया हरि नाम महामंत्र ला तुमी मागी, हरि नाम भक्ति विनोद प्रभु चरण पड़िया, भक्ति विनोद प्रभु चरण पड़ी से हरि नाम मंत्र लईला मागिया, से हरि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भजीब बलिया से संसार भीतर है। संसार में किस लिए आया? मां की गर्भ में प्रार्थना किया, बाहर निकाल तो भजन करूंगा, भजन करने के लिए आया लेकिन भूल गया है? भूलिया रही ले तुम्हें अविद्या भरे, इसलिए आप भूल गया। इसलिए गौरांग महाप्रभु कह रहे कि तुमको लेने के लिए मैं अवतार लेकर फिर आया है? मैं स्वयं आया हूं, तुम्हारे लयते आमी है नू अवतार, तुमको ले जाने के लिए वापस फिर मैं अवतार लेकर आया हूं। तुम तो भूल गया लेकिन मैं तुमको फिर लेने के लिए आया हूं है? इसलिए तुम्हारे लिए औषधि लेकर आया हूं, मेडिसिन जो माया को नाश करेगा, वो मेडिसिन वो क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र। भक्ति में ठाकुर कहे कि और कोई आया नहीं है लेकिन मैं पहले जाकर लाइन में खड़ा होकर ले लिया मेडिसिन। कौन? भक्ति में ठाकुर कहे कि आप लोग मेरे लाइन में मेरे पीछे खड़ा होकर फिर मेडिसिन ले लो है, यही मेडिसिन है माया को नाश करने के लिए। इस कलि युग में कोई दूसरे उपाय नहीं है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे है। चार नियम पालन करना और हरे कृष्ण मंत्र के जप और कीर्तन, ये सफिशियंट है आपको कहां ले जाने के लिए? जन्म मृत्यु संसार में, मां की गर्भ में निकाल आए फिर दोबारा प्रवेश करने की कोशिश मत करो है, फिर भगवत धाम बैक टू गॉड हेड। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की।